الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں آج کل فہم التصوف کی تعلیم ہوتی ہے کچھ اصطلاحات کی شرح بیان کی جا رہی ہے پچھلی دفعہ جو اصطلاحات ہوئے تھے اس کے یعنی کنٹینویشن میں آج انشاءاللہ کچھ اور مزید اصطلاحات کی بات ہوگی سکر کتاب التعریفات المؤلف علی بن محمد علی عزین الشریف الجرجانی کے مطابق السکر وغیبۃ بوارد قوی وطرب الالتزاز وہ اقوى من الغیبہ وتم منها یعنی قلب پر کسی واردات قوی کا غلبہ ہو جانے سے غیبت کا طاری ہو جانا یہ خوشی اور لذت کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ سکر غیبت سے قوی تر اور مکمل ترین ہوتا ہے۔ اصل میں انسان کو کسی بھی جذبہ سے جب مغلوب ہونے کی حالت پیش ہوتی ہے تو اس کا عقل جواب دینے لگتا ہے اور وہ جو چیزیں اس کو عام طور پر سمجھ آتی ہیں وہ اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور جس چیز کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے بس اسی طرف ہی وہ زارے سوچتا ہے، اسی کو دیکھتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو سکر جو ہے یہ اصل میں ایک قسم کی مدہوشی ہے اور سکر کامل بھی ہو سکتا ہے، جزوی بھی ہو سکتا ہے۔ کامل سکر وہ ہوتا ہے جب انسان بالکل ہی تمام چیزوں سے یعنی گویا کہ بے خبر ہو جائے، صرف اپنے اس محبوب کے اور جو جزوی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر بعض دفعہ یا جزوی طور پر ایسی حالت پیش آتی ہے اس کو کہ کچھ چیزوں کی طرف اس کا خیال نہیں جاتا اور کچھ چیزوں کی طرف زیادہ خیال جاتا ہے، یہ والی بات ہے۔ اس کے مقابلے میں سہو کی کیفیت ہے۔ کتاب و تعریفات مؤلف علی بن محمد علی زین الشریف الجرجانی کے مطابق السہو رجوع المعارف الی الاحساس بعد غیبت و زوال احساسی ہی، یعنی جس وقت احساس چلا گیا تھا اور اس پہ غیبت کی حالت طاری ہو گئی تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں سے گویا کہ بے خبر ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جب دوبارہ اس کی طرف رجوع ہو جائے تو اس کو سہو کہتے ہیں۔ سہو کی کیفیت یعنی گویا کہ ہوش میں آنا دوبارہ۔ یہ جو ہوش میں آنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر چیز کو اپنے اپنے طور پہ دیکھتا ہے، جس چیز کی جو خاصیت ہوتی ہے، جس چیز کے بارے میں جو احکامات ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کو سمجھ آنے لگتی ہے۔ سکر میں ایسا نہیں ہوتا لیکن سہو میں یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو سہو کی حالت ہے وہ کیا ہے؟ وہ مطلوب حالت ہے، یعنی گویا کہ ہمیں اپنے سہو کی حالت پہ رہنا ہے، الا کہ خود ہی چلا جائے ہوش۔ یعنی کوئی اپنے آپ کو خود بے ہوش نہیں کر سکتا، ہاں اگر بے ہوش ہو جائے تو بے ہوشی کی وجہ سے معذور ہوگا، بے ہوشی کی وجہ سے معذور ہوگا، یہ نہیں کہ بے ہوشی کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، بے ہوشی کی وجہ سے معذور ہوگا۔ اس وقت اگر اس کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نکلتے ہیں جو کہ نہیں نکلنے چاہیے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں ہے نہیں۔ قرآن پاک کا مشہور مطلب آیت کریمہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ جل شانہ کسی کو اس کے جو مطلب جتنا یعنی وہ اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ اس کو یعنی ذمہ دار نہیں بناتا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے یا اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر شریعت کے وہ احکامات مکمل طور پر وہ جو ہے نا مطلب یعنی وہ نہیں نافذ نہیں ہوتی۔ جتنی اس کو سمجھ ہوتی ہے اتنی مطلب اس کو یعنی اس کو اس کے بارے میں ذمہ داری ہوتی ہے۔ जबकि जो सो की हालत है वो मतलूब हालत है, उसमें शरीयत का पूरा एहतराम होता है, और उसमें जो है ना मतलब कोई ऐसी बात मतलब वो नहीं करते जो कि शरीयत में नाजायज़ हो। इस वजह से मतलूब हालत जो है ना सो की है। एक बहुत बड़े नक्शबंदी बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, हमारे बड़े हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने एक शेर कहा और ये शेर हमारे ग्रुप में किसी ने वो कर लिया, इन्हें पोस्ट कर लिया। उस शेर का मतलब देख के मुझ पर शेख ने ऐसी तवज्जो की कि वो जो सोहो यानी गोया कि होश की बातें थी वो तो सिर्फ गोया कि मतलब बातें रह गई, जुस्तजू रह गई, इन असल चीज़ तक मैं पहुंच गया। अब चूंकि हमारे नक्शबंदी सलूक के बिल्कुल खिलाफ जा रहा था, यानी गोया कि ये शेर भी गालिबन ने सोर की हालत में शुक्रिया की हालत में कहा होगा, हाँ जी, तो इस वजह से मैंने फिर इस पर एक रुबाई लिखी और रुबाई फिर मैंने पोस्ट कर ली। और वो रुबाई ये थी कि मतलब जो है ना वो जज़्ब की हालत मुझ पर जब शेख की तवज्जो सितारे हो गई तो उसने मुझे सलूक के जबाल सर करने के लिए गोया कि तैयार कर लिया। हाँ जी, थोड़ा सा मैंने अर्ज़ किया कि अगर हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मकाल यानी उनके जो तारीरात हैं उनको अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि शुक्र ऊंचा है या सोहो ऊंचा है। हाँ जी, ये रुबाई मैंने पेश, वो खुदा की शान वहाँ तक पहुँच गई उस बुजुर्ग तक पहुँच गई, अल्लाह ताला पहुँचाने वाले हैं। हाँ जी, तो वो बजाय नाराज़ होने के बहुत खुश हुए। उनने हमारे उस साथी से कहा कि इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। पर मैं असल चीज़ यही है, असल चीज़ यही है कि शुक्र से सोह की हालत में इंसान आए और शरीयत की पूरी पाबंदी नसीब हो जाए। एक बात इसमें ये हो गई। दूसरी बात इसमें ये है कि जो जज़्ब है वो सलूक तय करने के लिए, जज़्ब बजाय तो खुद मतलूब नहीं है, क्योंकि जज़्ब में वही वाली बात आ जाती है ना, शुक्र की हालत आती है। हाँ जी, तो जज़्ब जो है ना मतलूब नहीं है, जज़्ब सिर्फ और सिर्फ नफ्स को जेर करने के लिए ताकि नफ्स सलूक के लिए तैयार हो जाए उसके लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। क्या ख्याल है, अपनी मर्जी से एनेस्थीसिया आप जो है ना वो लेंगे बगैर ऑपरेशन के? डॉक्टर साहब कोई चाहता है उनको एनेस्थीसिया दिया जाए? लेकिन जो ऑपरेशन करना होता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, नहीं दिया जाता? बस यही सूरत हाल है कि मतलब ये कि एक मजबूरी है, क्योंकि पहले वक्तों में जब अल्लाह ताला ने लोगों को बड़े कुवा अता फरमाए थे, मजबूत लोग थे और शौक था उनमें सलूक तय करने का, तो उन हजरात को जज़्ब के बगैर ही सलूक तय कराया जाता था, यानी स्टार्ट ही जो है ना मतलब सलूक से लिया जाता था। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह के रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के दर्जात बुलंद फरमाए ये था कि इस वक्त लोग, या यूं कह सकते कुछ लोग, सबको के बारे में तो हम नहीं कह सकते, कुछ लोग वो जो है ना बराह रास्त सलूक तय करने के काबिल नहीं है, बराह रास्त सलूक तय करने के काबिल नहीं है, यानी वो नहीं चल सकते इसमें, वो जो है ना वो इतना शौक ही नहीं रखते, उन पे अगर मुजाहिदा आएगा या कोई और बात आएगी तो वो जो है ना वो भिदक जाएंगे। तो उनके लिए आसान तरीक ये है कि जैसे लोहा को पहले गर्म किया जाता है, अंगारा किया जाता है, फिर उसको मोड़ा जाता है। हाँ जी, तो अगर उसके मिसाल के तौर पर उसको सिर्फ गर्म करने ही मतलूब हो तो इससे आप क्या काम लेंगे? उससे तो आप कोई काम नहीं ले सकते, लेकिन गर्म करने के बाद आप उसको जब मोड़ेंगे, रीशेप करेंगे, कोई चीज़ उससे बनाएंगे तो आपके काम आए, चाहे उससे चूरी बनाए, चाहे उससे तलवार बनाए, चाहे उससे कोई और बंदूक बनाए, चाहे कुछ जो भी बनाए, लेकिन बहरहाल उससे आप कोई चीज़ बना दे तो आप जो है ना मतलब उसको फिर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यही असल में बुनियादी मकसद था जज़्ब का। ये जो है ना ये मतलब नहीं है कि बस मजबूर बन जाओ। हाँ जी, इसके लिए हजरत मुजद्दद साहब रहमत ने एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ ईजाद किया है, मजबूर मुतमक्किन। मजबूर मुतमक्किन वो लोग होते हैं जो अपने जज़्ब के ऊपर मुतमैन हो जाते हैं और उस पर तमकीन हासिल कर लेते हैं, इतना शऊर उनको हो जाता है कि मतलब वो मतलब सारी चीज़ों को जानने लगते हैं, लेकिन होते मजजूब है, सलूक उन्हें तय नहीं किया होता। ऐसे लोगों के लिए हजरत ने इस्तेलाह बना दी, मजलूम मुतमक्किन और फिजगन के बारे में फरमाया, न ये खुद पहुंचे न दूसरे को पहुंचा सकते हैं। हाँ जी, न खुद पहुंचे न दूसरे को पहुंचा सकते हैं। तो ये असल में शुक्र सोह से बात चली है कि शुक्र जो है ना मजबूरी है, शुक्र मजबूरी की हालत है और सोह मतलूब हालत है। अब कोई आदमी अगर मुतशद्दिद हो सोह की हालत का और वो कह दे शुक्र वाले तो सारे जिंदगी कहे, देखो ना इस किस्म के अल्फाज उसने कहे, ये कह दिया, वो सुबहानी माजम शानी कह दिया, अपना कह दिया, वो भी गलत है, वो भी गलत है। शुक्र की हालत है भाई, शुक्र की हालत में तो इंसान नहीं जानता ना कि वो क्या कह रहे हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने बाकायदा इसका वाक्य लिखा है कि हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने जब इस किस्म के नारा लगाया तो उनके मुरीदों ने इनसे कहा, हजरत जब वो आफाके में आ गए, कह रहे आपने क्या किया, आपने तो ये अल्फाज कहे हैं। अच्छा मैंने ये अल्फाज कहे, आइंदा अगर मुझे हालत हो तो मुझे चुरिया मारो। ये उनके अखलास की अलामत थी, अखलास तो था, वो जानते थे, मसलब भी जानते थे कि ये तो मतलब जाहिर है कि अगर होश में कोई कह दे तो काफिर हो जाएगा। हाँ जी, तो उस पर जो उन्होंने फरमाया कि मुझे चुरिया मारो अगर फिर दोबारा ये हालत हो गई। अब खुदा की शान, जब दोबारा उनके ऊपर ये हालत आ गई तो मुरीदों ने उनके उसके मुताबिक चुरिया मारी। वो चुरिया जितनी चुरिया हजरत को लगाते वो चुरिया खुद को लगती थी। वो चुरिया खुद को लग, उसकी वजह ये कि वो अपने आप में था ही नहीं, वो तो कोई और कह रहा था। कोई और कह रहा का मतलब क्या है आपको पता है? वो ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग थे, हजरत तान में सबने वाक्य लिखा है, फरमाया है, फरमाया कि एक बुजुर्ग थे, उसके उसके पास एक बुढ़िया आई और अपने कोई लड़का ले आई थी, बेटा पोता जो भी था वो ले आई थी कि हजरत ये मादरजात अंधा है, आप जो है ना इसके ऊपर इस पर दम कर ले, ये ठीक हो जाए। हजरत के ऊपर जो हाल तारी था वो ये था कि वो अपने नफ़ी की हालत थी उन पर, बाज़ बुज़ुर्गों पर बाज़ दफ़ा हाल तारी होते हैं तो नफ़ी की हालत थी। तो उनने कहा मैं कोई मूसा हूँ कोई ईसा हूँ कि मैं ये काम करूँगा? ये उनके मौजज़ात थे ना मूसा अलैहिस्सलाम के और ईसा अलैहिस्सलाम के, तो इस किस्म के। तो उन्होंने कहा मैं कोई मूसा हूँ या ईसा हूँ कि मैं ये काम करूँगा? खैर वो बुढ़िया तो रोती हुई चली गई कि उनका काम पूरा नहीं हुआ। इधर उनको हजरत को इल्हाम हो गया, इल्हाम ये हो गया कि मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं करता हूँ। अब अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम था, मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं करता हूँ, तो अल्लाह ताला तो कह सकता है, अल्लाह जल्ला शान तो कह सकता है। अब उसने जब ये हालत देखी, उसने जब ये बात मतलब इल्हाम के तौर पर उनको पता चला, तो इल्हाम ये जो जिस वली के दिल पर होता है उसको बहुत महबूब होता है, क्योंकि बात अल्लाह की होती है। हाँ जी, तो वो इतना खुश हो गया कि वो मुसलसल ये कहते जा रहा था, बुढ़िया के पीछे भागता रहा कि मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं करता हूँ, मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं करता हूँ। और ये कहते कहते उनके चेहरे पे हाथ पेरा और वो जो है ना मादरजात अंधा जो है ना वो भीना हो गया। चेहरे बुढ़िया को तो काम हो गया लेकिन मुरीद बड़े हैरान हो गए, हजरत ने क्या बात की। अब थोड़ा सा जब अपने हाल में आ गया उसने, हजरत आप क्या फरमा रहे थे, तू कहते मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं करता हूँ, वजार तो बड़े गुस्ताखी के कलमे हैं। तो उसने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि, अच्छा मैं ऐसे कह रहे थे, कहते हाँ, कहते ये तो मैं नहीं कह रहा था, ये तो इल्हाम था, मैं तो कोई वो अल्फाज दोहरा रहा था, मैं तो वो अल्फाज दोहरा था। तो अब अगर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खुद अपने से बिल्कुल गयूबत इख्तियार किए हुए अल्लाह जल्ल शानू की बात सुबहानी माजम शानी कह दे, तो जुबान से तो निकल रहा है किसका, बायजीद बुस्तामी रहमत, लेकिन बात किसकी है? तो चुरिया तो उसी वजह से उन लोगों को लग रही थी ना। हाँ जी, तो ये जो बात है, इस किस्म की बातें चूंकि लोग नहीं समझते इसलिए कहते समझने वालों के करीब करीब रहा करो, समझने वालों के करीब करीब रहा करो ताकि कोई ऐसी बात हो तो कम अज कम यानी गलती इंसान ना करे। इल्हाम, किसी के दिल में कोई बात इल्का कर देने को इल्हाम कहते हैं, लेकिन ये लफ्ज ऐसी बात के इल्का के साथ मखसूस हो चुका है जो अल्लाह ताला या मलाइका की जानब से किसी के दिल में डाली जाती है। अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से अम्बिया या अलिया को जो इतला या हिदायत रूहानी तौर पर दी जाती है उसको इल्हाम कहते हैं। जैसे कि आप सल्लम का मुबारक इरशाद है, जब अल्लाह अज़्ज़ोजल किसी बंदे से भलाई का रदा फरमाते हैं तो उसे दीन में फ़कीह बना देता है और रुश्त हिदायत इल्हाम फरमा देता है। مسند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. مقصد یہ ہے کہ الہام جو ہوتا ہے یہ اللہ جل شانہ کا کام ہے یا کسی فرشتے کا اللہ کے حکم سے کسی کے دل میں الہام کر دیتا ہے کوئی بات. اور جو حضرات اس فن اس چیز سے آشنا ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کے احکامات بھی وارد ہوتے ہیں, اس کے احکامات بھی ہیں. مثال کے طور پر اپنے الہام کی مخالفت نہیں کر سکتے. حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنے الہام کی مخالفت نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے دینی نقصان تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ شرعی بات نہیں ہوتی, لیکن اس کو دنیائی نقصان پہنچاتا ہے اگر نہ مانے تو. کہتے ایک بزرگ تھے, وہ کہیں جا رہے تھے تو الہام ہوا کہ نہ جاؤ. اس نے کہا شاید یہ میرا خیال ہے. پھر اٹھ گیا, اٹھ گیا تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ پھر الہام ہوا کہ نہ جاؤ. پھر ان کو خیال, پھر جو ہے مطلب یہ کہ انہیں الہام ہوا نہ جاؤ. اس دفعہ جب اس وہ روانہ ہو گیا تو گر گئے اور اس کے پیر ٹوٹ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے الہام جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں تو ان کو اس کا باقاعدہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ میں جانے بلا بات ہوتی ہے. اس وجہ سے انسان کو اس طرح ہونے کی, ہاں البتہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. کشف, خواص خمسہ کے بغیر کسی چیز کا نظر آنا, معلوم ہونا یا کسی چیز کا ادراک ہونا. ہماری پانچ حصے ہیں, اس کے ذریعے جیسے میں کوئی چیز دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں, ہاں جی مطلب سوچتا ہوں, یہ تمام حصے جو بھی ہیں اس کے ذریعے سے اگر مجھے معلوم ہو جائے تو یہ کشف نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کے بغیر اگر میں کوئی چیز دیکھتا ہوں, مثال کے طور پر اب دیکھو ٹیلی فون مجھے کوئی کر لے کراچی میں, ایسا ہو گیا اور ایسا ہو چکا ہو تو کیا خیر ہے, مجھے پتہ چل گیا تو کشف ہوگا؟ وہ تو کشف نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے مجھے ٹیلی فون پر پتہ چل گیا. بلکہ اب تو یہ والی بات ہے کہ وہ موبائل ہے, ادھر کر لے تو جو چیز ہوتی وہ یہاں میں ادھر دیکھ لیتا ہوں, تو یہ کشف نہیں ہے. کشف ان تمام چیزوں سے مطلب علاوہ چیز ہے, مختلف چیز ہے. ان کے بغیر اگر کوئی اس قسم کی بات ہو جائے تو اس کو کشف کہیں گے. کشف کی پھر قسم ہے, کشف مطلب زمانی بھی ہوتا ہے, کشف مکانی بھی ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں یہاں انگلینڈ میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے مجھے نظر آ جائے, جیسے عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا وہ ساری جبل والے واقعہ میں پتہ چل گیا تھا تو انہوں نے اس طرح فرمایا تھا, تو یہ کشف مکانی ہے. اچھا, اور دوسرا زمانی یہ ہے کہ مجھے جیسے 2 سال کے بعد کوئی چیز ہونے والی اور مجھے ابھی اس کا پتہ چل جائے تو یہ کشف زمانی ہوگا. سیر اللہ, سالک جو ابتدا میں روحانی مریض ہوتا ہے علاج کے لیے مرشد کامل کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں اطلاع و اتباع کے ذریعے سالک کی روحانی بیماریاں آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہوتی ہیں, یہاں تک کہ درجہ ضرورت میں سالک کا دل ان بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے, جس کی طرف قرآن پاک میں ارشاد قد افلح من زکاہا, یعنی بے شک جس نے نفس کو پاک کیا کامیاب رہا. اس کے ساتھ سالک کا قلب اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہوا, یعنی اس میں تواضع, اخلاص, تفویض, حب الہی, حب رسول, نعبت اللہ کی صفات پیدا ہوئی اور اس میں رسوخ حاصل ہوا, یعنی ان صفات نے قلب میں جگہ پکڑ, ان کو حاصل کرنے کی تدابیر سے آگاہ ہوئی, تو کہا جاتا ہے اس کی سیر اللہ کی تکمیل ہوئی. اس کے بعد سالک کو علم الیقین و فن اعتام حاصل ہو جاتا ہے اور شیخ اس کو اکثر اجازت و خلافت دے دیتے. اصل میں یہ لفظ جو ہے نا سیر اللہ کافی مشہور ہے, لیکن اس کے مفہوم جاننے میں کافی کنفیوژن لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں. اصل میں 3 چیزیں ہیں ان کی اصلاح مطلوب ہے, بغیر اس کے انسان کی اصلاح نہیں ہوتی. ایک قلب ہے, ایک نفس ہے اور ایک عقل ہے. ان 3 میں سے ہر ایک کو صرف ایک لے لیا تو گمراہی ہے. اگر صرف ایک کو لے لی کہ بس میں سے کوئی کہہ دے کہ صرف قلب سے تو یہ گمراہی ہے, کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا قد افلح من زکا, اس کا کیا کہیں گے؟ ہاں جی, اس طریقے سے صرف نفس کا کسی نے کہہ دیا وہ بھی گمراہی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوٹ رہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے, اگر وہ غلط. اس طرح عقل کے بارے میں بھی ہے. اب یہ 3 چیزیں ٹھیک ہو تو انسان ٹھیک ہو, کیونکہ یہ 3 ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. عقل قلب کو, قلب نفس کو, نفس قلب کو, قلب عقل کو, ان یہ آپس میں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں. तो इस वजह से अगर कोई एक ठीक हो जाए तो दूसरा उसको खराब कर सकता है। मसलन एक हौज है, उसमें पांच छह नहरें आ रही हैं, और पांच छह नहरों में सारा गंदा आ रहा है, और आप उस हौज को साफ करना चाहते हैं, कैसे साफ करेंगे? कर सकते हैं, जब तक आपने उन नहरों को बंद नहीं किया होगा कि जो यहां से गंदा आ रहा है, या उसको साफ नहीं किया होगा, उस वक्त तक आप बेशक हौज को साफ कर ले, वो फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें मुसलसल गंद तो आ रहा है। अब देखिए हमारे जो नफ्स है ये बाकायदा एक्टिव है, हर वक्त एक्टिव है। हम जो आंखों के साथ देख रहे हैं वो नफ्स के जरिए से देख रहे हैं, कानों के जरिए से सुन रहे हैं तो नफ्स के जरिए से सुन रहे हैं, जुबान के जरिए से बोल रहे हैं नफ्स के जरिए से बोल रहे हैं, क्योंकि इन तमाम चीजों पे नफ्स का असर है। अब जब ये वाली बात है तो अब मैं जो भी दिल को साफ कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर इधर मैंने जिक्र किया और बाहर जाकर गैर महरम पे मेरी नजर पड़ गई, तो इधर से मेरा दिल साफ हो गया, उधर दोबारा गंदा हो गया, मसला हो गया। तो अब ये सारी बातें जो है ना, मतलब अगर मैं नफ्स को ठीक नहीं करता तो दिल को कभी भी ठीक नहीं कर सकता, दिल को कभी भी ठीक नहीं करता, और अगर मैं दिल को ठीक नहीं करता तो फिर नफ्स को भी ठीक नहीं कर सकता। क्यों? वजह है कि दिल में ईमान है, कुफर, ईमान, जज्बात, एहसास, ये सब दिल में है। जिस दिल में ईमान ना हो तो ईमान के बगैर आप मशक्कत करते रहे ना तो कोई फायदा होगा? उसके बगैर तो वो नहीं होगा। असल बात यह कि दोनों ऐसे आपस में इंटरेक्टिव हैं कि नफ्स में फजूर भी हैं, यानी आप कुरान पाक के उसके नस के मुताबिक, और उसमें तकवा भी है। यानी अगर आप वजूर के तकाजों को दबा दे तो उससे तकवा बन जाएगा। तो अब देखो मुझे बताएं कि फजूर आप सब जानते हैं कि नफ्स में होते हैं, तो अगर फजूर को आप दबाते हैं तो तकवा किधर होगा, पैदा किधर होगा? नफ्स में होगा। लेकिन नफ्स में कोई चीज स्टोर नहीं हो सकती, स्टोर कहां पर होगा? दिल में होगा। मतलब यूं कह सकते हैं कि कारखाना तो नफ्स में है लेकिन गोदाम दिल में है। हाँ जी, अब जब मतलब जैसे आप बेशक अच्छा बनाए वो भी गोदाम में जाएगा और बुरा बनाए वो भी गोदाम में जाएगा। हाँ जी, तो अगर आपने तकवा हासिल कर लिया तो तकवा सीधा दिल में जाएगा। तो आप सब ने फरमाया तकवा हा हो ना तकवा हो शायर कलम, तकवा इधर है, तकवा इधर है, और इशारा कर दिया दिल की तरफ। और दूसरी तरफ ये भी हदीस शरीफ है कि जब भी कोई बुराई करता है तो उसकी वजह से उसके दिल पर एक स्याह दाग लग जाता है, फिर अगर वो रोता धोता है तौबा करता है तो दाग धुल जाता है, नहीं तो फिर अगर कोई गलती करता है फिर दाग लग जाता है, फिर अगर रोया रोए धोया तो दाग धुल जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर तीसरा दाग भी लग जाएगा। उस तरह दाग लगते लगते ऐन मुमकिन है कि उसका पूरा दिल दागों में छुप जाए। ऐसे शख्स पर मसलूबुल हिदायत हो जाता है। ऐसे लोग के बारे में खत्म अल्लाह वाला कुलूबिम वाला समीम वाला अबसार वशाव तुम मजाम रजीम। अब जब ये वाली बात है तो अब देखें, शरारत तो नफ्स में है लेकिन उसका असर दिल पर है, और खैर भी नफ्स में पैदा होता है, नफ्स तकवा नफ्स दिल में पैदा और उसका असर दिल पर है। लिहाजा ये जो कहते हैं अखलाक हमीदा और अखलाक जमीमा, ये दोनों दिल में हैं लेकिन होते दोनों नफ्स की वजह से हैं, होते दोनों नफ्स की वजह से हैं तो दिल में। लिहाजा बीमार दिल में वो होता है जिसके अंदर ये तमाम जमीमा चीजें हों, और सेहतमंद दिल वो होता है जिसके अंदर वो सारी अच्छी चीजें हों। लेकिन सेहतमंद दिल आप बनाएंगे कैसे? तब जब कि आपका नफ्स साथ साथ ठीक हो जाएगा। अगर आपका नफ्स ठीक नहीं तो आपका दिल सेहतमंद हो ही नहीं सकता, आपका दिल सेहतमंद हो ही नहीं सकता। यही वो बात है जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से एक अजीम गुमराही फैली हुई है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा दे, बहुत अजीम गुमराही फैली हुई है। यानी कुछ लोगों ने दिल को इग्नोर कर दिया तो वो भी गुमराही में चले गए, कुछ लोगों ने नफ्स को इग्नोर कर लिया वो भी गुमराही में चले गए। दोनों की अपनी अपनी सफाई है, तस्फिया दिल के लिए, तस्किया नफ्स के लिए। دل کی صفائی مطلوب ہے اور نفس کی رذائل سے پاکی مطلوب ہے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اب اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ ان میں سے اگر ایک ہے تو کامیابی نہیں ہو سکتی. اگر ایک ہے تو کامیابی نہیں ہو سکتی. اور تینوں کا اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا جو عقل ہے یہ دو چیزوں سے اثر لیتا ہے. یا یہ دنیا کی چیزوں سے اثر لیتا ہے یا یہ آخرت سے اثر لیتا ہے. دیکھو صاف بات ہے, اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, کیوں قرآن پاک میں اکثریت کی بات ہوتی ہے نا, کہ اکثریت کی بات کیا ہے. اللہ جل ارشاد فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, ہرگز نہیں بلکہ تم قریب والی چیز کو چاہتے ہو اور بعد میں آنے والی چیز کو چھوڑتے ہو. اب ظاہر مطلب ہے کہ یہ دل کون سا ہے؟ یہ دل جو قریب والی چیز سے اثر لیتا ہے نا, تو قریب والی چیز کون سی ہے؟ دنیا یا آخرت ہے؟ بس یہ اس کا مطلب عمومی طور پر لوگ دنیا دار ہیں. عمومی طور پر کیا ہے؟ لوگ دنیا دار ہیں, دنیا سے اثر لیتے ہیں. اب جس کی بھی ترقی ہو گئی روحانیت میں اور اس کا دل صاف ہو گیا اور اس کا نفس بھی قابو میں آ گیا, اسی صورت میں اس کا جو عقل ہے یہ آخرت سے لینے لگے گا. کیوں؟ ان کو آخرت کی قیامت کے بعد جو واقعات آنے والے ہیں وہ یاد ہوں گے, ان سے اثر لے گا اور پھر شریعت کے احکامات پر چلے گا. شریعت کے احکامات پر چلے گا, یعنی گویا کہ دیکھو میرے پاس یہ علم ہے کہ آگ میں میں ہاتھ ڈالوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا, یہ میرا دنیا کا علم ہے. تو کبھی میں ہاتھ آگ میں ڈالتا ہوں؟ بھائی میں بہت بڑا بزرگ بھی بن جاؤں کیا میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا؟ نہیں ڈالوں گا اگر مجھ میں عقل ہے تو. ہاں عقل نہیں ہو شکر میں چلے جاؤں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, پھر معاملہ اور ہے. لیکن جب تک مجھ میں عقل ہوگا تو میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا. اچھا تو اب یہی عقل یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ میں گناہ کر سکتا ہوں, کیوں گناہ کرنے کا مطلب جہنم میں جلنا. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ فوری ہے اور وہ ذرا بعد میں ہے, اس سے زیادہ کیا فرق ہے؟ بھائی سچے نبی نے بتائی ہیں باتیں اور سچے اللہ جل شان نے قرآن میں باتیں بتائی ہیں, تو اس بات میں تو کوئی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. ہاں جی جب جھوٹ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعات تو ایسے ہی ہیں. حضرت مولانا علیہ السلام جو فرماتے تھے افسوس اللہ کے قوانین بڑے اٹل ہیں اور ہم بڑے غافل ہیں, اللہ کے قوانین بڑے اٹل ہیں اور ہم بڑے غافل ہیں. یہ کیوں فرمایا تھا؟ وہ یہی فرمایا کہ اللہ کا جیسے یہ قانون ہے کہ آگ میں کوئی ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا, اس طرح گناہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. اب جب یہ والی بات ہے تو ظاہر مطلب مجھے ایسے ہی اس سے ڈرنا چاہیے, مجھے ایسے ہی اس سے ڈرنا چاہیے. یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام اتنے ڈرتے تھے کہ وہ اپنے مال کو اپنا نہیں کہتے تھے, بلکہ ذرا بھر بھی شبہ ہوتا کہ کسی اور کا ہو سکتا ہے تو کہتے ہی نہیں تیرا ہے. اور آج ذرا بھی شبہ ہمیں ہو جاؤ کہ ہمارا ہے تو ہم کہتے ہو, معاملہ الٹا ہو گیا. تو اب یہ جو بات ہے کہ جو ڈرتا ہے تو ظاہر مطلب اس کی بات الگ ہوتی ہے. تو جو عقل آخرت کے امور کے مطابق, امور کے یعنی مطلب جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے وہ صحیح عقل ہے, اس کو عقلی ایمانی کہتے ہیں, اس کو عقلی ایمانی کہتے ہیں. اور جو دنیا کے چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عقل نفسانی ہے, وہ عقل نفسانی ہے. اللہ پاک فرماتے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا, بلکہ تم جو دنیا کی زندگی ہے اس کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ہم جو عقل ہے اب یہ بلکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے, یہ کون سی چیز کو اپیل کرنے والی ہے؟ عقل کو. یعنی عقل والوں کو سمجھ جانا چاہیے نا کہ مطلب بھائی جو چیز یعنی باقی بھی رہنے والی اور ہاں جی اور اچھی بھی ہے تو اس کے لیے پھر کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کو ترجیح دینا چاہیے. تو اب یہ جو تین چیزیں جب درست ہو جائیں اور یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں سلوک کے ذریعے سے, یہ تین چیزوں کا ٹھیک کرنا سلوک کہلاتا ہے. یہ تین چیزوں کا عقل کا कल्ब का और नफ्स का, इन चीज़ों का ठीक करना ये सलूक कहलाता है, सलूक तो करना कहलाता है, जिसमें 10 मुकामात आते हैं, वो 10 मुकामात तो करने होते हैं। हज़रत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, अब जब ये 10 मुकामात तय हो जाए, उस सलूक मतलब मुकम्मल हो जाए, इसको कहते हैं सैर अल्लाह मुकम्मल हो गया, सैर अल्लाह मुकम्मल हो गया। अब ये सैर अल्लाह मुकम्मल होने का मतलब नहीं कि वासिल हो गए, बल्कि अब वासिल होने के ट्रैक पर आ गए, वासिल होने के ट्रैक पर आ गए, मतलब अब मैं चढ़ पड़ा हूँ, मतलब सही रास्ते पे। जैसे मैं इधर शहर में फिर रहा हूँ और जा रहा हूँ मोटरवे की तरफ, और फिर मैं मोटरवे के ऊपर चढ़ जाऊँ, तो बस फिर इसके बाद में हाजी अपने मंजिल की तरफ। अब ये कि मतलब लाहौर इस तरफ है, मिसाल के तौर पर, हाँ जी लाहौर इस तरफ है, और मैं जो है ना मतलब ये कि जब जाता हूँ मोटरवे इस तरफ जा रहा हूँ, तो मैं तो लाहौर के खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन इस तरफ मोटरवे पे चढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जैसे मोटरवे पे चढ़ जाऊंगा तो फिर मैं फौरन लाहौर की डायरेक्शन में रवाना हो जाऊंगा, यही वाली बात है ना। तो इसीलिए ये जो बात है मतलब सैर इलल्लाह, ये सिर्फ सैर फिल्ला जो ट्रैक है, या जिसको मतलब हम कह सकते हैं अल्लाह ताला तक पहुंचने वाला जो ट्रिक है, उसको जो है ना मतलब उसके ऊपर चढ़ने के लिए सैर सैर इलल्लाह। जब ये मुकम्मल हो जाए तो सैर फिल्ला कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, सैर फिल्ला कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। क्यों? उसकी वजह यह है कि इसमें कोई मंजिल, आखिरी मंजिल है ही नहीं, ये तो आपकी पूरी जिंदगी है। अपनी जिंदगी में आप आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं। मुझे बताओ भाई, दुनिया के अंदर कोई किस चीज पर सब्र करता है? उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे वो चलता है ना। हाँ जी, तो यहां पर भी ये बात है कि ये तो माशाल्लाह ला महदूद वो है। तो इसमें जो है ना मतलब है कि जितना जो पहुंच गया तो पहुंच गया, जिस वक्त जिसकी आखिरी वक्त आ गया, उस वक्त उसकी जो पोजीशन होगी उसके मुताबिक उसका मर्तबा मतलब जो है ना वो होगा। तो यही बात है कि सैर अल्लाह जो है ना, असल में हम लोग जो है ना वो शरीयत पर आने के लिए, क्योंकि सैर फिल्ला सारा शरीयत है, सैर फिल्ला में और कुछ नहीं है, तरीके सहाबा इसको आप कह सकते हैं, यानी सहाबा किराम ने जैसे जिंदगी गुजारी, क्योंकि आप सब ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं चलूँ जिस पर मेरे सहाबा चले हुए, तो इसका मतलब है कि हमने सहाबा के तरीके पर चलना है। लेकिन इसके अंदर मेरा नफ्स चूंकि रुकावट है, मेरा दिल चूंकि रुकावट है, मेरा अकल चूंकि रुकावट है, इन रुकावटों को दूर करना पड़ता है। इन रुकावटों को दूर करने का नाम सलूक है और सैर अल्लाह है। जब ये मुकम्मल हो जाए तो सैर फिल्ला बिल सीधी बात है, शरीयत है बस, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं, न इसमें मुराकबात है, न इसमें मुजाहदात है, इजाफी की बात कर रहा हूँ, हर चीज़ मुजाहदा है लेकिन भले इजाफी इजाफी मुजाफी मुजाहदे की बात कर रहा हूँ, न इसमें कुछ और बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ शरीर पर चल रहे हैं। आजकल हमसे लोग कहते हैं ना, भाई तुम्हारी तसव्वुफ में मुराकबे कहाँ से आ गए, या जिक्र बिलजार कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए, हदीस शरीफ से साबित है या सहाबा किराम से साबित है, इस तरह मुझसे हमसे पूछते हैं ना, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो तो फिर तो इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है, इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं सही चीज़ों पे नहीं चल रहा, मिसाल के तौर पर मेरी सेहत ठीक नहीं है, अगर मेरी सेहत ठीक है तो डॉक्टर साहब कितनी दवाई खानी चाहिए? हजार बस ठीक है ना, फिर जरूरत ही नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर मैं बीमार हूं तो क्या करूं? कुछ भी नहीं, इलाज करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर से मैं मजबूर होऊंगा, वो जैसे बताएंगे तो उस तरीके से मैं करूंगा ना, मतलब ये वाली बात है। तो इसी तरीके से अगर इंसान ठीक है, मतलब उसका दिल भी ठीक है, उसका नफ्स भी काबू में है, और उसका अकल भी सही काम कर रहा है, तो फिर उसको किसी शेख के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे कोई ऐसा आदमी बताओ जो इतनी चीजों के बगैर बिल्कुल ठीक हो, अगर कोई हो तो हम तो उसकी ज्यारत करना चाहते हैं। हाँ जी, ऐसा होता नहीं है भाई, छोड़ो ना, चलो मैं मानता हूं है, चलो फर्ज कर लिया कि है, तो उस शख्स को मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह सबसे बड़ा मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को तो जरूरत थी इसकी, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह सबको तो जरूरत थी, इमाम गजाली रहमतुल्लाह सबको जरूरत थी, इमाम राजी रहमतुल्लाह को जरूरत थी, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को जरूरत थी, इन सब हजरात की जरूरत थी, इसको जरूरत नहीं, तो इसका मतलब ये तो उनसे बड़ा है ना, क्या ख्याल है? मान लो बस यही क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब इन हजरात को मजबूरन मशाय के पीछे जाना पड़ा, उनको अपनी इसलाह करनी पड़ी, उसके बाद अल्लाह ने उनको ये मुकाम अता फरमा दिया, और उनसे मुकाम बहुत ऊंचा अता फरमाया, लेकिन कैसे अता फरमाया? आखिर इसके मैदान के अंदर काम किया ना। हमारे हजरत फरमाया करते थे, मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया भाई बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना पड़ता है, जो पहले छोटा बनने के लिए तैयार नहीं उसको कभी बड़ा नहीं बनाया जाता। ये वाली बात है। तो जब ये समझ में आ गई तो आखिर मजबूरन ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ अलबत्ता कोई ख़ास शख्स इसके लिए मतलूब नहीं है, जिसके साथ भी मुनासिबत हो और उस काम को जानता हो उसके पास चले जाओ, जो इस काम को जानता हो, इसका अहल हो और जाने आपको उसके साथ मुनासिबत हो, बस ठीक है, फिर उसके पास चले जाओ। तो यहाँ पर ये बात है, सैर अल्लाह से बात निकली थी, आप सैरफ अल्लाह, सैर अल्लाह की जो कि तीन चीज़ों, ये नफ्स कल्ब और अकल की इस्लाह है, मुकम्मल होने के बाद साले खालिस दीन पर चलते हैं, चलता है, जिसको तरीक़े सहाबा कहते हैं। इससे कल्ब के अंदर तस्किया और तकवा से खास जिला और नूर पैदा होता है, और सालिक बराबर कल्ब को मासे अल्लाह से फारिग करता रहता है। तो अकतला की ज़ात और सिफात और अफ़ाल, नीस हकाय की कोनी और अम्मा हकाय के अमाल शरिया सालिक के दिल पर मुनकशिफ हो जाते हैं, जिससे उसका खालिक के साथ कुर्ब में इजाफा होता रहता है, और वह ऐनुल यकीन से हक्कुल यकीन तक सफ़र करता रहता है। इसको सैर फिल्ला कहते हैं, जिसकी कोई हद नहीं, जितना हिस्सा जिसने अल्लाह ताला के फजल से अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पाया वो इसी का हिस्सा है। मौत तक सालिक की सैर जारी रहती है, और तफरीद व तजरीद, ये दो चीज़ें हैं इस्तेलान। मैं आपको इसकी मिसाल दूँ, मैं जाना चाहता हूँ लाहौर के अंदर एक ख़ास शख्स के साथ मिलने के लिए, ये मेरी नियत है, मैं जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ से निकलूँगा, मोटरवे पे चढ़ूँगा। अच्छा, मोटरवे पे मैं जाऊँगा लाहौर के टोकर नियाज बेग तक, हाँ जी। उसके बाद टोकर नियाज बेग से मैं मालूम करूँगा नक्शे के ज़रिए से कि उस शख्स का इलाका कौन सा है, उस इलाके की तरफ मैं अपनी गाड़ी मोड़ूंगा। तो ये गोया कि बड़े रास्ते से मैं एक छोटे रास्ते की तरफ हाँ चला गया। फिर इसके बाद वहाँ उस इलाके में जाऊँगा, तो उस इलाके में कोई मोहल्ला होगा जिसमें वो रहता होगा, तो मैं उस बड़े मोहल्ले को छोड़कर उस छोटे से मोहल्ले, बड़े इलाके को छोड़ के छोटे से मोहल्ले की तरफ मुड़ूंगा। फिर वहाँ उस मोहल्ले के अंदर कोई, मतलब जाहिर है कोई कूचा हो, कोई होगा, तो वहाँ जाऊँगा। फिर वहाँ जाकर कोई घर होगा, उस घर में जाऊंगा, उस घर में जाकर फिर वहां कोई कमरा होगा जिसमें बैठा होगा, फिर उसमें जाऊंगा, फिर वहां कोई किसी कोई सीट होगी जो उस पर वो बैठा होगा। अब ये सारा तफरीद तजरीद चल रहा है, समझ में आ गई ना बात? यानी मुसलसल मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, गोया कि पूरी दुनिया वसी दुनिया है, उस वसी दुनिया के अंदर आपने अपनी मंजिल को पाना है, तो उस मंजिल की मारिफत अगर आपको हासिल है तो उसके मुताबिक आप चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, हत्ता कि आप अपने मंजिल मकसूद को पा लेंगे। तो यहाँ फरमाया कि ये तफरीद और तजरीद के साथ जो है ना, मतलब ये चीज़ मतलब होती रहेगी। इसमें चाहे शेख से मुरीद बढ़ जाए ये भी मुमकिन है। इस तमाम तफसील से अब देखो ना, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुजद्दद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह के शेख है ना, हाँ, लेकिन खुद ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुजद्दद अफसानी को ज़ाहिर अहमद सरहिंदी कहते हैं, अहमद अहमद हमारे दरमियान सूरज की तरह है और हम सितारों की तरह है। हम ज़ाहिर है बस ठीक है, अल्लाह पाक ने जो मुकाम उसको देना था, जरिया कौन बन गया? हाँ मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह जब अपने शेख की बात करते, फिर सुनो किस किस्म के अलकाब बयान करते हैं, किस किस्म के आदाब। हजरत के मकतूबा शरीफ है ना, हजरत के ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह के नाम, हाँ जी, उसको ज़रा गौर से पढ़ो कि वो अदब किसको कहते हैं, अदब ऐसा, लेकिन उनका शेख उसको कैसे समझते हैं, हाँ ये भी बात है। तो ये जो है ना, मतलब ये है कि जो सैरफिल्लाह है इसमें ये नहीं है कि शेख हमेशा आगे होगा मुरीद से, ऐन मुमकिन है मुरीद शेख से आगे चला जाए, क्योंकि इसलाह तो हो चुकी है ना, अब तो सिर्फ मेहनत है ना, अब तो सिर्फ मेहनत है। तो मेहनत जितना ज़्यादा कोई कर ले और जितना कबूल हो उसके हिसाब से बात चलती है। इस तमाम तफसील से बात रख याद रखनी चाहिए कि बाज़ किताबों में सिर्फ अल्लाह के बाद भी दो सिरे ही लिखी गई हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ अल्लाह ही का हिस्सा है, इनको अलग बयान करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक शेख की निगरानी में सालिक के सलूक तय करने का ताल्लुक है, वो सिर्फ सैर अल्लाह है जिसका जानना ज़रूरी है। सिर्फ अल्लाह सालिक और अल्लाह के दरमियान का मामला है, जिसके बारे में इरशाद मुबारक है, राज जो आशिक व माशूक के दरमियान में है, किरामन कातिबी को भी खबर नहीं इसकी। हाँ जी, चाहे किसी को अपने जमाल के मुशाहदा में मुस्तगरक करे, और जो इस्तिलाह में मुस्तहलिकीन कहलाते हैं, या इनको मखलूक की इस्लाह पर मामूर करके सिफत बका से मुतसिफ कर दे, जो इस्तिलाह में राजीन कहलाते हैं, या अल्लाह ताला की हिकमत है जो भी फैसला फरमा दे, राजीन को मुर्शिदीन भी कहते हैं, इनके ज़ाहिर को आम मखलूक से खल्त मल करके इनके ज़रिए अहकाम शरिया लोगों तक पहुँचाते, उसकी मैं आपको वजह बताऊँ। असल में कुनत हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज, हम जिन्स के साथ मिलकर परवाज करते, कबूतर कबूतर के साथ बाज बाज के साथ। तो इसी तरीके से आम लोग उनसे फायदा हासिल कर सकते जो आम लोगों में गुला मिला हो, जो आम लोगों में गुला मिला न हो उनसे आम लोग फायदा कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि दरमियान में गैप होगा, उस गैप की वजह से उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। नतीजतन एन मुमकिन है अपनी तरफ से अपने जहन में कोई बात रख ले और गुमराही का जरिया बन जाए। तो इसी तरीके से जो हजरात राजेईन होते हैं उनको अल्लाह जल्ला शान उनके मिजाज को ऐसा बदल लेते हैं कि उन लोगों के अंदर गुल मिल जाते हैं, और ये एक हिजाब भी बन सकता है। हिजाब इस तरह के बाल लोग ऐसे लोगों को जो गुले मिले होते हैं उनकी कदर नहीं करते, वो समझते हैं कि शायद ये बुजुर्ग नहीं है, हालांकि अंबिया किराम की शान ये थी कि वो लोगों में गुले मिले होते थे। बल्कि कुरान पाक में एतराज भी कुफार की तरफ से जो हुआ है वो यही हुआ है कि कैसे अंबिया हैं कि नबी हैं कि बाजार में भी जाते हैं और शादी भी करते और खाना भी खाते हैं, ये कैसे नबी है। आज हालांकि नबी तो वही थे, तो इसका मतलब यह कि जो अंबिया के तर्ज पे चलते हैं, अंबिया के तरीके पे चलते हैं, तो आम लोग उनको बुजुर्ग नहीं समझते। हजरत तानवीर मुसम ने इसका बड़ी अजीब तरीके से एक्सप्लेनेशन की, फरमाया एक होता है मुब्तदी और एक होता है मुंतही और एक होता है मुतवस्सित। मुब्तदी वो होता है जिसने अभी अभी काम शुरू किया है, मुंतही वो होता है जो काम मुकम्मल कर चुका होता है और राजे इनमें से हो जाता है। मसलन मुतवस्सित वो होते हैं जो अभी उसने काम शुरू किया है, दरमियान में पहुंच गया है और होश आवास में नहीं है, जोश में है, जोश में। अब ऐसे लोगों की बातें अवाम को बड़ी अपील करती हैं, वो उनको बहुत बड़ा बुजुर्ग समझते हैं जो इस किस्म की मतलब ऊंची ऊंची बातें करते हो ना। मिसाल के तौर पर बेटा मर जाए, कहते बस जी अल्लाह पाक ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, कह 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 लगा दे लोग, कहें यार ये तो बहुत बात रहे, हालांकि आप सब समरो रहे हैं। इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वफात पर, हाँ जी तो आप सबसे तो कोई बड़ा नहीं हो सकता ना। हाँ जी, तो अब ये जो है ना ये इस किस्म की बातें हैं। तो अब ये जो चीज है कि मतलब लोग चूंकि इन चीजों को बड़ा समझते हैं, इन चीजों से ज्यादा मुतासर होते हैं, तो मुतवस्सितीन के पीछे जा रहे होते हैं, हालांकि थोड़ा सा आगे हो जाए। जो मुतवस्सितीन होते हैं वो अभी रास्ते में हैं, वो अभी पहुंचे नहीं है। हजरत ने उसकी मिसाल ऐसी दी, फरमाया मुतवस्सितीन की मिसाल हरे भरे फसल की है और राजीन की मिसाल खुश्क फसल की है जिसमें दाना पक चुका होता है। फरमाया अगर राजीन से फायदा लोगे यानी उनको काटोगे तो उससे मैं तो अपना मतलूब मिल जाएगा, लेकिन अगर मुतवस्सितीन तक के जाओगे यानी उनको काटोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ चारा मिलेगा, उसमें दाना तो नहीं होगा, असल मकसूद तो उसमें हासिल नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो असल में जो राजीन है उनको आम मखलूक के साथ खलत मर्द कर दिया जाता है, उनके जरिए उनको अहकाम शरिया पहुँचाते हैं। इल्मुल यकीन, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि मुस्तनद तरीकों से किसी को पता चले कि जहर से आदमी मरता है और आग अशा को जलाती है, ये मेडिकल बुक्स सारी ऐसी इन चीज़ों से भरी होती है ना, ये होता है इन पे नॉर्मल पैथोलॉजी, नॉर्मल पैथोलॉजी, ये सारा मतलब जो है ना वो है इल्मुल यकीन है, ऐनुल यकीन। इसकी मिसाल जैसे कोई चीज़ को आग से जलते हुआ देखते हैं या अजहार से मरता हुआ देखता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ जैसे मलेरिया, मलेरिया का आपने चैप्टर पढ़ा, मलेरिया के बारे में आपको इलम बहुत अच्छी तरह हो गया, ये इल्मुल यकीन है। फिर मलेरिया का बीमार आपके पास आया और आपने उसकी हालत देखी कि शिवरिंग हो रही है, उसका टेम्परेचर जो है ना मतलब हाई हो गया है और इस तरह और चीज़ें उसकी भी हैं जो निशानी किताबों में लिखी, आपने सारी टेस्ट कर ली, कहते हैं बिल्कुल, कहते हैं टेक्स्ट बुक पिक्चर है। हाँ जी, तो मतलब यह कि आपने देख लिया तो ये आपका ऐनुल यकीन हो गया। और हक्कुल यकीन ये कि आपको खुद ही मलेरिया हो जाए, सारा कुछ देख लोगे। हाँ जी, तो ये तीनों जो ना ऐनुल यकीन की मिसाल है, जैसे कोई किसी चीज़ को आग से जलते हुए देखता है, हर से मरते हुए देखता है। हक्कुल यकीन इसकी मिसाल है जैसे खुद पर कोई चीज़ गुजरती है, जैसे आग से जला या अजहार से मरने गए, तो इसलिए वो उसको हक्कुल यकीन हो जाता है। कुरान पाक में भी हत्ता यातिकल यकीन, मैंने जब तो मिला यकीन आ तो उसका वो यही चीज़ है ना, बस वो वक्त मौत आ जाए तो यही बात है। हाँ जी, नफ्स बहेमी, ये जानवरों का नफ्स होता है, जब कोई इंसान अपनी जबिल्लत से इतना मगलूब हो कि शऊर से काम न ले तो उसको उसका नफ्स नफ्स बहीमी कहलाएगा। असल में हर इंसान के अंदर हैवान भी मौजूद है, उसकी वजह यह कि वो हैवानी ख्वाहिशात इंसान की भी है, भूख प्यास इस तरह और जो जिनसी ख्वाहिशात है तमाम जन मतलब जैसे जानवरों में इस तरह इंसान में भी है। तो इंसान में तो हैं जानवरों की तरह, फर्क जानवरों में इंसानों में ये है कि जानवर जबिल्लत के मुताबिक काम करते हैं, वो शऊर और अकल से काम नहीं ले सकते, उनके पास ये चीज़ नहीं है, लिहाजा वो तो कुल्लम कुल्ला अगर इस किस्म की बातें कर ले तो किसी को भी इस पर हैरत नहीं होती, क्योंकि जानवर ही है ना, जानवर से कौन नाराज होता है, बस वो तो जानवर ही होता है। लेकिन इंसान जो है वो ठीक है, जबिल्लत उसमें भी ये चीज़ पाई जाती है, जबिल्लत में ये चीज़ पाई जाती है, लेकिन उसको अल्लाह ने अकल दिया है, शऊर दिया है, वो उसको काबू कर सकता है और उसको शरीयत के दायरे के अंदर अंदर ला सकता है कि शरीयत ने जिस चीज़ की इजाज़त दी है वो करे, और जिस चीज़ की इजाज़त नहीं दी उस पर काबू पाए। तो ये जो बात है मतलब नफ्स बहीम ही उन लोगों का नफ्स है जो शरीयत की परवाह ना करे और जबिल्लत के मुताबिक काम करे। इस वक्त यूरोप में जब इंसान जाता है ना, यूरोप में बिल्कुल नफ्स बहीमी है, ऐसे कुल्लम कुल्ला इस किस्म के वो काम करते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं, नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं। क्यों, वजह क्या है, उनको ये चीजें जो जिसकी वजह से इंसान रुकता है वो चीजें उनने तबाह कर दी, खत्म कर दी हैं। यानी मजहब के साथ उनका कनेक्शन कुछ भी नहीं है, मजहब के साथ उनका कनेक्शन सिर्फ चंद रसूमात तक होता है, बस एतवार के दिन वो भी जो मजहबी आदमी होता है वो गिरजा चला जाता है। हाँ जी, और बाद में जो ना मतलब ये, और थोड़ा सा अगर कुछ और भी दीनदार हो तो कन्फेशन कर लेता है, जाकर पादरी से सर्टिफिकेट लेते हैं मेरा गुना माफ़ हो गया। हाँ जी, वो इनके इस किस्म की चीज़ें हो गई। तो अब ये जो है ना मतलब उनका जो नफ्स बहीमी है वो इतना स्ट्रांग है कि वो उन तमाम बुराइयों के लिए जबरदस्त दलाइल ढूंढ चुके हैं। जो बुराई है ना मतलब जिसको हम 100% बुराई मानते हैं, उसके उसके लिए उनके पास ऐसे जबरदस्त दलाइल हैं कि आप उनसे कहें तो वो आपको, इसका मतलब उनका अकल नफ्स बहीमी से मुकम्मल मगलूब हो चुका है, उनका जो अकल है वो नफ्स बहीमी से मुकम्मल मगलूब हो चुका है, अब उनका अकल नफ्स बहीमी का साथ दे रहा है। ये वाली बात, यानी आप लोग देखो ना, मिसाल के तौर पर छोटी सी बात मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, वरना मेरे कोई सियासी बात तो नहीं है। यानी आप देखें, वो नारा लगाते हैं पूरी दुनिया के अंदर मसावात और आज़ादी, आज़ादी राय है ना, नारा लगाते हैं ना, इसकी चैंपियन बने हुए, लेकिन कोई औरत अगर वहां निकाब करना चाहे अपनी अपने राय से, अपनी आज़ादी मतलब अपने जो ना उसके समझ से, वो उसको कहते हैं तुम क्यों करते हो, अब ये आजादी रे के खिलाफ है या नहीं, लेकिन उसको अपना हक समझते हैं। उस पर दलाल देते हैं, हालांकि कोई मतलब भाई, जैसे सेकुलरिज्म है तुर्की के अंदर जो सेकुलरिज्म आया था, अब सेकुलरिज्म जो है मतलब उसमें तो ये होता है कि सबको अपने अपने मजहब में आजादी दो, यही सेकुलरिज्म का ट्रू पिक्चर है ना। लेकिन उनका सेकुलरिज्म क्या था, इस्लाम नहीं होना चाहिए बाकी सब चीजें होने चाहिए, तो ये तो एंटी इस्लामिक मतलब अप्रोच हो गया, ये तो सेकुलरिज्म तो नहीं हो गया। सेकुलरिज्म तो वो है कि आप हर एक हर एक को अपने अपने मजहब की आजादी दो, तो फिर क्यों फिर कहो मैं सेकुलर हूं। वो आदमी तो सेकुलर हो ही नहीं सकता जो कि खास राय रखता हो कि ये हो दूसरा ना हो, वो तो चाहे मतलब जाहिर कोई भी मजहब हो तो वो तो उसको मजहब ही कहेंगे ना, हम उसको वो तो नहीं कहेंगे, या एंटी मजहब एंटी रिलीजन हम कहेंगे उसको, वो तो सेकुलर तो नहीं कह सकते। तो ये बात है कि यानी जो नफ्स बहीमी होता है जब इंसान के ऊपर बिल्कुल छा जाए तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता, वो जानवर बन जाता है। नफ्स इंसानी जब इंसान का शऊर इसकी जबिल्लत पर गायब आ जाए और शऊर से काम लेने लगे, चाहे अच्छा हो या बुरा, इसके बाद जो इरादे के साथ करेगा उस वक्त उसका नफ्स नफ्स इंसानी कहलाता है। यानी एक आदमी किसी भी मजहब को फॉलो करता है, उस मजहब के मुताबिक वो अपने शऊर को जबिल्लत पर ले आता है, गालिब कर लेता है, और उस मजहब के मुताबिक कर ले तो कम अज़ कम वो इंसानी तो है, या अगरचे गलत हो सकता है। बस यहूदी हो हिंदू हो कोई और हो तो वो अपने जबिल्लत पर गालिब ले आता है ना, मतलब आदमी जो है ना उसको उसके लिए मुजाहिदा भी करते हैं, उसके लिए बर्दाश्त भी करते हैं, उसके लिए सब कुछ करता है, तो वो क्या है, ये जो है ना इंसानी है। हाँ अलबत्ता अगर ईमान की बात करें यानी मुसलमान और ये, तो फिर वो माशाल्लाह यानी वो नफ्स जो है वो सही नफ्स है, नफ्स मुतमईन हो जाएगा अगर उसके मुताबिक हो गया। मबदा फेज, जहां से फेज की इब्तिदा होती है। फेज किसको कहते हैं, ये बहुत मतलब एक लफ्ज है, ये भी ऐसे वैसे होना चाहिए कि फेज किसको कहते हैं, लेकिन ये दरमियान में रह गया। फेज असल में खैर की कोई भी सूरत हो उसको फेज कह सकते हैं। मसल आपको खैर जहां से भी पहुंचता है तो आपको उधर से फेज मिल रहा है, वो फेज इलम का भी हो सकता है, वो फेज समझ का भी हो सकता है, वो फेज आपको सेहत का भी हो सकता है, वो फेज किसी भी अच्छी चीज का हो सकता है जिसकी आपको जरूरत है, वो फेज है। हाँ जी, तो मबदा फेज से मुराद ये है कि जहां से फेज की इब्तिदा होती है। मूरिद फैज, जहां फैज का वरूद होता है, यानी फैज जहां आना है उसको मूरिद फैज कहते हैं। तनजुल, तस्जीह से तशबीह की तरफ सफर, तनजीह से तशबीह की तरफ सफर। मसलन देखो, एक चीज है तनजीह की सूरत में किसी को समझ नहीं आ सकती, तो आप उसको इसके लिए कोई मिसाल ढूंढते हैं, कोई तरीका ढूंढते हैं जिसके जरिए से उसको समझ आए, तो वो चीज हो तो की नहीं लेकिन उसकी तरह। हाँ जी, तो ये जो तंजी तशबीह है, तशबीह में जाहिर उसकी तरह होता है ना, ये जो चीज है ये असल में असल से तो हटता है लेकिन समझ के करीब आ जाता है। असल से हट जाता है लेकिन समझ के करीब आ जाता है। तशबीह किस चीज को समझने के लिए, किस चीज के साथ, उसकी सिफत में मुशाबहत का इदराक, जबिल्लत। इंसान के वो आम और मुश्तरक जज्बात, ख्वाहिशात और रुझानात जो उसकी अपने तख्लीक करदा नहीं होते या जिनकी नशोनुमा में उसका अपना कोई हाथ नहीं होता, गैर शऊरी और गैर आदि तौर पर इंसान की पैदाइश के साथ जो पैदा होते हैं, जबिल्लत है। जबिल्लत के बारे में हदीस शरीफ है, फरमाया अगर तुम्हें कोई कह दे कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया तो इसका यकीन कर सकते हो, यानी मुमकिन है, लेकिन ये अगर कोई कह दे कफला की जबिल्लत बदल गई तो ये नहीं है, जबिल्लत नहीं बदलती। अब मैं इसके बिल्कुल आसान मिसाल दूं, पठान कितना बड़ा बुजुर्ग होगा तो पठान ही रहेगा, क्यों बदल सकता है? पंजाबी चाहे कितना ही बड़ा बुजुर्ग हो जाए वो पंजाबी ही रहेगा, और कितना बड़ा डाकू हो जाए फिर भी पंजाबी रहेगा, क्यों? वो तब्दील हो सकता है नहीं, बस सारा मतलब है कि वो जो उसकी जबिल्लत है, तो जबिल्लत जो होता है वो एक ढांचा है इंसान के करेक्टरिस्टिक्स का, मतलब जो इंसान की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसकी जो है ना मतलब है कि उसका एक मजमुआ वो जबिल्लत है। मिसाल के तौर पर देखो, एक बर्तन है, वो बर्तन कुछ चीजों से बना हुआ है, तो जब तक वो बर्तन मौजूद होगा उसी उन्हीं चीजों का बना होगा, लेकिन उसके अंदर जो मजरूफ है वो कभी कुछ और कभी कुछ, वो तो तब्दील हो सकता है ना। अब उसके ऊपर मैल आ गया, उस मैल को आप दूर कर सकते हैं क्योंकि वो मजरूफ है। लेकिन अगर वो मिसाल के तौर पर मैल भी काला है और उसका सरफेस भी काला है, अब मैल हटाते हटाते उसके सरफेस तक पहुंच गए, अब क्या ख्याल है उस मजीद काले को मिटा सकते हैं? वो नहीं मिटा सकते, क्यों? ये वो उस बर्तन कैसा है, वो बर्तन कैसा है। तो इसी तरह जबिल्लत जो होता है उसको दूर नहीं किया जा सकता, जबिल्लत को खत्म नहीं किया जा सकता, जबिल्लत को तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके अंदर जो कुछ है मजरूफ वो तब्दील हो सकता है, और वो नफ्स है। ठीक है ना? तो नफ्स की इस्लाह हो सकती है, जबिल्लत की नहीं। अच्छा, कुव्वत गज़बिया, अपनी नापसंदीदा चीजों को दफा करने का जज्बा। मच्छर मेरे ऊपर बैठ गया तो मैं क्या कहूंगा, वेलकम वेलकम, उसको दफा करूंगा। वो दफा करने मुमकिन है, मच्छर को तो कुछ ना कुछ अपने आप को थप्पड़ मार दूं, हो सकता है ना, कभी कर भी लेते हैं, असर हाथ हाथ जख्मी हो जाता है और मच्छर उड़ जाता है, ये होता है। तो ये जज्बा है, और जज्बे में इंसान का अकल काम छोड़ देती है, वो तो है ना। अब गुस्सा आ गया मच्छर पे, हो जाए ना अपने हाथ को जख्मी कर दिया। तो ये कुव्वत गज़बिया हर इंसान के अंदर होती है, और ये होने भी चाहिए, इसके अपने फायदे भी हैं। इल्काए रहमानी, दिल में रहमान की तरफ से इल्का का निज़ाम जोड़ फिर आम में ज़मीर कहलाता है। इल्काए शैतानी, दिल में शैतान की तरफ से वसाविस डालने का निज़ाम। लताएफ़ सित्ता, कल्ब रूह सिर खफी इख्फा और नफ्स, ये बुजुर्गों के यानी मतलब जिसको कहते हैं ना कशफ की बुनियाद पर चीज़ों को जो ना मतलब जिसको कहते हैं समझने से आइए, वरना ये सिर्फ लतीफा के माने में तो सिर्फ कल्ब और नफ्स और अकल यही साबित है तीनों, बाकी सारे मुकाशफात हैं, उनकी जगह भी मकशूफ है। मतलब यह है कि जिनको जो जो इस वजह से आज़ाद हज़रत आदम बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह उनके कशफ में अलग मुकामात है, और ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह के कशफ में अलग मुकामात है, तो मुकामात भी तब्दील हो सकते हैं। लेकिन है बहरहाल सेंसिंग पॉइंट्स है, सेंसिंग पॉइंट्स। लताएफ खमसा, कल्ब नफ्स अकल रूह और सिर, ये इन दोनों में फ़र्क है, तफसील बाद में बताई जाएगी, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। यानी ये भी लताएफ है वो भी लताएफ है, लेकिन उन लताएफ का जो है असल में उसका माना इनके सेंसिंग पॉइंट्स का है, कि सेंसिंग पॉइंट्स है, और लताएफ खमसा जो कल्ब नफ्स अकल रूह और सिर है ये बाकायदे निज़ाम है। कल्ब अलग निज़ाम है, नफ्स अलग निज़ाम है, अकल अलग निज़ाम है, रूह अलग निज़ाम है, और सिर अलग निज़ाम, ये निज़ाम है। और जो जो ऊपर जो बताया कल लताएफ सित्ता बताए गए ये क्या है, ये बाकायदा सेंसिंग पॉइंट्स। हाल दो मानों में बोला जाता है, किसी अमल का रूहानी कुव्वत से लबरेज होना और दूसरा कोई आरजी कैफियत। मसलन अहवाले बदलते रहते हैं, कोई परवाह ना करे, हजरत अक्सर फरमाते हैं ना, तो ये वो कैफियत की तरफ है। कहते हैं काल रा बेगजार मर्द हाल शु, पेश मर्द कामिल पामाल शु, काल को एक तरफ कर दो और मर्द हाल बन जाओ, तो क्या ख्याल इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ, बस आरजी कैफियत वाला बन जाओ। वहां पर इसका मतलब क्या है, इस्तेकामत वाला बन जाओ। हाँ जी, अच्छा, कैफियत, कोई किसी वक्त जैसा महसूस करता है, मुकाम वो जो कस्बी तौर पर एक देरपा बातनी हालत हासिल की जाती है। अहवाल तब्दील होते, मुकामात तब्दील नहीं होते, ये बताया गया, या अहवाल महूब होते और मुकामात मकसूब होते हैं, यानी मुकामात को बाकायदा यानी हासिल किया जाता है, अहवाल दे दिए जाते हैं। हाँ जी, मुक्तसिब, जिसको कस्बी तौर पर हासिल किया जाए, मुक्तसब मुक्तसब, वह भी अल्लाह ताला के फजल से अता होने वाली। दाया, बातिन में किसी काम के लिए मुहर्रिक जज्बा, दवाई दाई की जमा है। सिद्क एक मुकाम है जिसके मुताबिक कोलन फेलन हालन सच सालिक सच पर कायम हो जाए। कोलन फेलन हालन, कोलन फेलन हालन। अकीदा भी इसमें आ जाता है, अमल भी उसमें आ जाता है, कैफियत भी इसमें आ जाती है। हाँ जी, तो कोलन फेलन हालन। वजद, किसी अच्छे अंदरूनी जज्बे से जवारह का बेकाबू हो जाना, मसलन आंखें बरसने शुरू हो जाए, चीखें लगने शुरू हो जाए, जिस्म हिलना शुरू हो जाए, उछलना कूदना शुरू हो जाए, ये सब वजद की कैफियत में आ जाते हैं अगर बग़ैर इरादे के हो। इरादे के साथ हो तो मुनाफिकत है, क्योंकि वो हाल आपको हासिल नहीं, खाम खाब आप जाहिर कर रहे हैं तो मुनाफिकत है ना, इसलिए तवाजुद। ठीक है, सब्र, किसी मतलूब हालत पर ख़ुद को बरकरार रखने की इस्तेआत का मुकाम। तवक्कुल, मतलब देखे ना आपको कोई आर्मी में जो कहते हैं ना अटेंशन, तो अब अटेंशन कड़ा होता है बेचारा, अब बेशक उसको मच्छर काटे कटमल काटे वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? वो करंदर मोहम्मद खान ने लिखा है ना, कहते हैं कि हम जब इस तरह खड़े होते थे और इस तरह तो बहुत तंग होते थे, जिस वक्त वो रिलैक्स का वो कह देते बस हम जोर जोर से खारिश करते हैं, सारी खारिश बदले उतारते। अब ये मतलब ये है कि वो सब्र, उस पर सब्र है बस, क्या कि क्या करें और क्या कर सकते हैं। हाँ जी, तवक्कुल, अल्लाह ताला पर भरोसे का मुकाम। तकवा, अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरने का मुकाम। हिम्मत, अपनी तवज्जो से किसी शागिर्द या मुरीद को किसी मतलूब हाल पर लाने की इस्तेदाद। ये बड़ा अजीब लफज है हिम्मत का, जो लफज है ना, असल में मैं आपको क्या बताऊं, होता है यूए के फन तो है ये, इसमें कोई शक नहीं। तो उसमें ये है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो किसी हाल में बेकाबू हो गया। अब जो साहिब हिम्मत वाला होता है तो जैसे उसके हाल ने उसको बेकाबू कर दिया, तो इस साहिब का जो मुकाम है उसको दोबारा हाल पर लाता है, ये हिम्मत है। मतलब ये कि जो उसको दोबारा तवज्जो के ज़रिए से जो मतलब उसको अपने मुकाम पर जो लाता है, ये हिम्मत है। और अब तो हिम्मत को लोग और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पहले तो लोटपोट वाले शख्स को स्टेबल किया जाता था, अब खाम खा लोटपोट किया जाता है उल्टी मंतिक। हालांकि जो बेकाबू है उसको काबू करो ना भाई, क्या मतलब है, जो काबू है उसको बेकाबू करो, ये कौन सी हिम्मत है? ये सब नफ्स के करिश्मे हैं, अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। हाँ जी, कि मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को इस मकसद के लिए दिया है तो उसको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करो ना, यानी खूबी के लिए इस्तेमाल करो। अच्छा, तजल्ली, किसी शेख के दूसरे या तीसरे या चौथे या जहां तक अल्लाह चाहे मर्तबे में जाहिर होने को तजल्ली कहते हैं। तजल्ली व तजल्ला, ये बड़ी बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, उसकी वजह कि अल्लाह जल्ला शानु के साथ इसका ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला के बारे में तो हम गैर मुहताज गुफ्तगू नहीं कर सकते। हाँ जी, बस सिर्फ यूँ कह सकते हैं कि चूंकि अल्लाह ताला की ज़ात वराउल वरा है, तो अल्लाह ताला की ज़ात की मारिफत को हासिल करने के लिए जिस दर्जे में कोई इंसान जा सकता है वो भी बहुत नीचे का कोई दर्जा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला उससे भी ऊपर है। समझ में आ गई ना बात? अल्लाह ताला उससे भी ऊपर है। तो ये जो आपको जो नीचे मनाजिल में यानी वो नजर आता है वो आपकी अपनी मारिफत है, लेकिन आपकी मारिफत कामिल चूंकि नहीं है, लिहाजा वो आपको उस सूरत में वो तो नजर आ, लेकिन ये बात है कि अल्लाह पाक उससे भी आगे है, अल्लाह पाक ज़ात बराबर वाला है। तो ये तजल्ली जो होती है ये असल में इंसान को गोए के किसी हद तक मुतारफ करने के लिए वो भेज जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बाकायदा लफ्ज़ मौजूद है कि उसने कहा या अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा तू इस बाढ़ को देखो, अगर तू इस मतलब इस ये उसको बर्दाश्त कर सके तो फिर बात करो। तो पहाड़ के ऊपर तजल्ली फरमाई तो पहाड़ इधर हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, उसके बाद फ़ौरन कहा कि मैं बस मान ला। तो उसमें मतलब ये है कि ये जो होती है तजल्ली जो होती है उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर अल्लाह जल्ला शानू कोई रूहानी आँख आपकी पैदा कर ले, वो आपकी जिस तजल्ली को बर्दाश्त कर सके उतनी तजल्ली अगर आ जाए तो ये कोई एडजस्टमेंट वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। एक तरफ आपकी रूहानी आँख की कुवत बढ़ा दे, दूसरी तरफ उससे बहुत नीचे, तो जो मतलब जितना आप समझ सकते हैं उतना जो है ना, मतलब ये है कि वो मारिफत आपको हासिल हो जाएगी। तजल्ली सूरी, जब सालिक अल्लाह ताला का जिक्र करते हो, अल्लाह ताला की जात की मौजूदगी पर यकीन होने की वजह से उसका ख्याल अल्लाह की तरफ जाता है, तो कुवत मुद्रिका और कुवत वाहिमा एक ऐसी वहमी सूरत तराशता है कि जिसमें शिकल और रंग और जहत नहीं होती, लेकिन यकीन के लिए एक सूरत बनाता और दुरुस्त करता है ताकि इसकी शरह व तफसील पेश करे। और बाज़ अज़हान में यकीन सिर्फ सूरत ख्यालिया की शक्ल में फैल जाती है, इसको तजल्ली सूरी कहते हैं। बस कोई रोशनी की कैफियत है, कोई और इस किस्म की बात। हाँ जी, अब मिसाल के तौर पर अल्लाह नूर समावात वाला, अल्लाह ताला जमीन और आसमानों को मनवर करने वाला है। हाँ जी, अब ये जो है ना, ये जो चीज़ किसी के ऊपर वो है, तो उससे इंसान के जहन में एक रोशनी की सूरत पैदा होती है ना कि भाई अल्लाह पाक भी, हालांकि अल्लाह पाक तो इस तरह नहीं है, वो तो बरा बरा है ऐसे बरा। लेकिन अब आपको उस तजल्ली की वजह से मतलब अगर वो कोई चीज़ इस तरह नजर आ जाए तो वो तजल्ली सूरी होगी, वो तजल्ली सूरी होगी, वो असल तजल्ली, वो असल नहीं होगा, लेकिन यूं कह सकते उसका कोई अक्स, कोई मतलब जाना जिसको कहते हैं वो, जिसको कि तशबीह उसके तौर पे बात होगी, यानी तनजीह से तशबीह की तरफ कोई बात आई होगी। कुव्वत वाहमा, ख्याल की कुव्वत जिसे इंसान तसव्वुर कायम कर सकता है। कुव्वत मुद्रिका, वो कुव्वत जिसे अशिया व अहवाल का इदराक हासिल होता है। एतबार, हकायक के बामी ताल्लुक से हकायक का समझ में आना एतबार कहलाता है। नफ्स ये भी रुकता नहीं अपनी जगह पे, बुराई की तरफ ही जाती है, नीचे की तरफ यानी जाते है, और पानी भी नीचे की तरफ जाता है। अब पानी और नफ्स में एक एतबार कायम हो गया, पानी और नफ्स में एक एतबार कायम हो गया। अब जैसे पानी को आप ढक्कन देते हैं ताकि वो हदूद से बाहर ना जाए, तो नफ्स के भी हदूद मुकर्रर करने पड़ते हैं कि इससे बाहर ना जाए। अब उसके जरिए से आप बहुत सारी चीज़ें नफ्स की समझ लेंगे, तो अब ये इलम बेफायदा तो नहीं हुआ ना, लेकिन असल तो नहीं है, एतबारी इलम है, एतबारी इलम है। अच्छा, आलम मिसाल, ये एक आलम है जो आलम अरवाह व अजसाम के दरमियान है। वाह वाह वाह, जो कुछ आलम अजसाम में मौजूद है उसकी नज़ीर आलम मिसाल में मौजूद है। या करीम, बहुत अजीब चीज़ है ये आलम मिसाल, यानी पूरा एक जहान है और ये इस जहान से बहुत बड़ा जहान है, क्योंकि हर चीज की सूरत उसके अंदर मौजूद है। ये मतलब इसका हम अहाता नहीं कर सकते। मसलन अरवाह जो हैं वो जब दुनिया में आती हैं तो उनके लिए चूंकि मिसाल वहां पर मौजूद होती है, तो नफ्स, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आपकी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, नहीं हुआ इसका, नहीं हुआ। इसको सेव कर ले, الله لا إله إلا 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 الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اغزيت وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا منادي ينادي الايمان ان امن بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا افرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنه لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. توفني مسلم والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ربنا مقيم ورب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نسويرا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اني مسني ضر وانت ارحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجلنا للمتقين اماما. ربي اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. واسر لي في ذريتي اني تبت اليك مني من المسلمين اني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس والبائد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم آتي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها، إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، أسألك علما نافعا، اللهم اغفر لي ذنوبي خطي وعمدي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اهدني وسددني، اللهم نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح ديني الذي وعصمة امري، واصلح دنيا التي في معاشي، واصلح اخرتي التي في معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والماسم من عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغنى وشر فتنه الفقر ومن شر فتنه المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والزلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمع والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وزلاء الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن ورد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحان ربك رب العزة.